لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. وقال: إنا أرزنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين منها فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحمل الإنسان وكان الإنسان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. وقال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ایام اعضاء محرم 1441 ہجرہ کا یہ پہلا اچرا اپنی اختتامی منزل پر ہے. 10 مجالس ہو چکی ہیں اور آج یہ 11ویں مجلس ہے. آج کی مجلس میں مومنین اور مومنات کے لیے شرکت بہت مشکل ہوتی ہے. پرسوں رات شب عاشور سے لے کے کل شام غریبہ تک اتنے لوگ تھک چکے ہوتے ہیں، بہت سارے عزاخانوں میں 11 محرم کی اب مجلس بھی نہیں ہوتی ہے. شام غریبہ کے بعد ڈائریکٹ پھر 12 محرم سوئم یا زیارت کی مجلس ہوتی ہے. لیکن جو مومنین اور جو مومنات آج کی مجلس میں آ گئے ہیں، تو ان کا خیال کرتے ہوئے میں اسی موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں. اور آج میں نے قرآن کریم کی جنایتوں کی تلاوت کی. یہ ہر دفعہ اور ہر سال 11 محرم کی مجلس میں میرا موضوع بنتی ہیں، خاص یہ آیتیں نہیں، یہ آیتیں جس سورے کی ہیں. اور کل کی مجلس، یعنی کل سے مطلب آنے والا کل، ٹمورو شب جمعہ بھی ہے، تو شب جمعہ کی مجلس میں تو ہمیشہ میرے کچھ میسیجز ایسے ہوتے ہیں جو مجھے دینا پڑتے ہیں، چاہے شارٹ کر کے دوں. تو اس اعتبار سے یہ آج کی مجلس ایک طرح سے ایام اعضاء کے پہلے عشرے کا جو سبجیکٹ تھا اس سلسلے کی تقریباً آخری مجلس ہے. مگر میں نے یہ عرض کیا نا کہ اس مجلس میں میں سورہ احزاب کو اپنا سبجیکٹ بناتا ہوں. جو پہلی محرم سے سبجیکٹ چل رہا ہے وہ اپنی جگہ رہے گا، بیچ میں سورہ احزاب کا ذکر بھی آ جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کا یہ ریزن بتاؤں کہ آخر آج کی اس مجلس میں سورہ احزاب کیوں میرا ٹاپک بنتا ہے، آج میں نے خطبے کے بعد سورہ احزاب کی پہلی آیت کی تلاوت کی ہے، سورہ احزاب کی آخری آیت کی تلاوت کی، فرسٹ اینڈ لاسٹ دو آیت. لیکن اس سے پہلے کہ یہ بات کو آگے بڑھاؤں، چاند رات کی مجلس میں جو بات میں نے کہی تھی اس کو ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں، اس لیے کہ پہلا عشرہ تو بے شک ہو گیا، فرسٹ 10 ڈیز، لیکن ابھی بھی غم کی وہ تاریخیں چل رہی ہیں. کل آنے والی تاریخ زیارت کی مجلس، وہ چاند رات کا جو میسج ہے اعمال عاشورہ میں، جب آپ دعائے القمہ پڑھ رہے ہوں گے تو اگر ٹرانسلیشن آپ کے سامنے ہو یا تھوڑی بہت عربی آپ کو آتی ہو تو آپ کا دل بھی نہیں چاہ رہا ہوگا کہ یہ دعا پڑھی جائے. और उधर अलकमा वो रावी जिनके जरिए ये रिवायत हम तक आई, उन्हें इमाम मासूम ये बता रहे हैं कि जब तुम करबला मुअल्ला जाओ और आशूरा का दिन हो तो ये दुआ वहां पे पढ़ो, यानी अपने जाफरी सेंटर अटलांटा में नहीं, करबला में आका हुसैन की जरिए के सामने भी ये दुआ पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा। बल्कि मैं जुमले को कंप्लीट कर दूं, अगर आपकी अरबी अच्छी है या आपके सामने ट्रांसलेशन है, तो हमारे आशूरा में दो चीजें ऐसी हैं कि जो दिल नहीं मानता है कि इसको अंजाम दिया जाए। एक वही सूरह अहज़ाब जिसकी आयत को मैंने आज के खुतबे में तिलावत किया, दिल ही नहीं मानता है कि आशूरे का दिन आमाले आशूरा का वक्त जोहर से जस्ट बिफोर मैदान करबला का जिहाद अपने पूरे पीक और उरूज पर है, गर्दने कट रही हैं, शहदा के लाशें आका हुसैन उठा रहे हैं, प्यास की शिद्दत है, और हम क्या पढ़ रहे हैं, ऐ नबी अपनी औरतों से कह दो कि चादरें सही पहने और हिजाब करें और बाल छुपाएं और अपने शौहरों और बाप और माँ के अलावा किसी नामहरम के सामने न जाए। वही जो सूरह अहज़ाब की आयत है, अगर मैं उर्दू में उस वक्त पढ़ रहा हूं 11 बजे तो बहुत अजीब लगेगा, बल्कि बहुत से लोग कह भी देंगे कि नहीं हमें ये नहीं सुनना, बल्कि कुछ ज्यादा बदतमीज लोग कह देंगे कि ये आप मजलिस पढ़ रहे हैं कि ये वहाबियत को प्रमोट कर रहे हैं। मगर जहां जहां दुनिया में आमाले आशूरा होते हैं, आपका दिल चाहे कि दिल ना चाहे, आपको ये आयतें पढ़ना पड़ती हैं। एक आयत नहीं है जिसका मैंने खुलासा बयान किया, क्या रसूल याद करो वो वक्त के हमने तुम्हारी शादी उस लड़की से कराई थी कि जिसे पहले जैद ने अपने लिए चूज किया था और फिर जब तलाक हो गई तो सब वजह ना कहा हमने वो निकाह तुम्हारा कराया। या आशूर का दे जोहर का वक्त जिहाद करबला अपने पूरे उरूज पर, और शादी ब्याह और तलाक और पैगंबर की शादियां और इतना कुरान करीम इस वाकये को हाईलाइट कर रहा है कि पूरे कुरान में पैगंबर के 120,000 सहाबियों में सिर्फ एक सहाबी का नाम आया है ज़ैद, और वो भी सूरह अहज़ाब में जो आमाले आशूरा। हत्ता बाज हमारे यूथ भी कंफ्यूज हैं कि आखिर कुरान करीम में मौला का नाम क्यों नहीं आया, लेकिन ज़ैद का नाम आया और उस सूरे में आया है जो आशूर के दिन पढ़ा जाता है, और यह नाम भी सिर्फ इसलिए आया, इसलिए नहीं आया कि बड़ा जिहाद किया, बड़ी कुर्बानियां की, बड़ा सेक्रीफाइस किया, इस्लाम के लिए ये सर्विस दी, शादी की तलाक दी, शादी तलाक तलाक शादी। तो अब ये तो मैं थोड़ी देर बाद आने वाला हूं, और दूसरी आमाले आशूरा की जो दुआ नहीं पढ़ी नहीं जाती है वो दुआ अलकमा। रिस्क की बात हो रही है, रोजी की बात हो रही है, अपने जाती प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, लेकिन इसको मुझको रिपीट नहीं करना है। जो लोग आज की मजलिस में आ गए वो कल आमाले आशूरा में ये सारी चीजें सुन चुके होंगे। लेकिन दिल नहीं जा रहा, और इस्लाम एक ही चीज का नाम, आपका दिल ना चाहे लेकिन अगर अल्लाह कहे कि ये करना है तो वो काम करना होगा, अपने दिल को कुर्बान कर दो अल्लाह की ख्वाहिश पर। अगर आपका मन कहे कि यह चीज मुझे नहीं चाहिए लेकिन रसूल कहे कि तुम्हें यह काम करना है तो अपने मन को कुर्बान कर दो हुक्म रसूल। अगर आपको बिल्कुल पसंद ना आ रहा हो लेकिन इमाम कहे कि यह काम करना है तो अपनी नापसंदीदा चीज पर भी अमल कर लो इमाम की खातिर। यह है इस्लाम, इस्लाम की समरी, इस्लाम का खुलासा। चुनांचे आमाले आशूरा में हम सूरह अहज़ाब की तिलावत कयाम कयामत तक करते रहेंगे, दुआए अलकमा कयामत तक पढ़ते रहेंगे, क्योंकि इमाम ने हुक्म दिया। और ये हुक्म इमाम ने क्यों दिया है, सूरह अहज़ाब की बात नहीं कर रहा, दुआए अलकमा की, इसलिए कि कल मेरी आखिरी मजलिस है लेकिन कल शब जुमा शुरू हो चुकी होगी इंशाअल्लाह, अगर कल तक जिंदगी रही तो कल आखिरी मजलिस है, कल शबे जुमा शुरू हो चुकी होगी। जुमे के दिन एक बार फिर मैं चांद रात का मैसेज दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा वक्त ले लिया तो शॉर्ट करता हूं, और यह बहुत फेमस बात है इसलिए इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि वीक के 7 दिन 14 मासूमीन में इस्लाम ने तकसीम कर दिए, कहा कि ये दिन इनके लिए, एक दफा मैंने पहले भी इसी अशरे में बात बयान की, ये दिन इनके लिए, ये दिन इनके लिए, उसमें फ्राइडे का दिन रखा गया है जमाने के इमाम के लिए। और दिन रखने का मतलब ये नहीं है कि बस ये इमाम का दिन है, इसका मतलब ये है कि जब दिन की स्टार्टिंग हो तो आप पहले उस इमाम को सलाम करें, इसके बाद फिर अपने दूसरे काम शुरू करें। दिन हमारे यहाँ यानी अकॉर्डिंग टू इस्लाम स्टार्ट होता है नमाज शब से, और फिर फजर की नमाज पढ़िए और फिर उस इमाम की जियारत पढ़िए जिसका वो दिन, फ्राइडे जमाने के इमाम का दिन। अब उसमें एक लफ्ज वो आता है टाइटल इमाम का, या मौलाया अंत करीम औलाद किराम, जो जियारत पढ़ते हैं एवरी फ्राइडे दुनिया भर में हर जगह पे, फजर के बाद नहीं जोहर के बाद या जुमे के बाद ये जियारत पढ़ी जाती, और इमाम जमाना के बहुत सारे अलकाब हैं, सफीनत नजात ऐन अल हयात, इसी जियारत में आखिर में हम जाते हैं तो एक जुमला कहते हैं, या मौला या अंत करीम उन मिन औलाद अल किराम मामूर उन बिज़ियाफत वल इजा फअज़िफनी व अजर, मौला आप करीम है और करीम की औलाद में अल्लाह ने आपको इसी काम के लिए मुकर्रर किया है कि मेहमानों की खिदमत करे और उनको पनाह में ले, बस मुझे भी अपनी पनाह में लीजिए। जियारत का ये जुमला है, हर जुमे को हम पढ़ते हैं, अपने आप को इमाम की पनाह में देते हैं। बट मौजू इमाम जमाना नहीं है, मौजू है एक लफ्ज अंत करीम उन मिन औलादिल किराम। चांद रात का मौजू आज आखिरी मजलिस में आ रहा है, क्योंकि आने वाले कल की मजलिस शब जुमा की वजह से उसके अपने टॉपिक्स अलग हो जाएंगे। तो अब फिर सुनिए, करीम अंत करीम अरबी में चार लफ्ज, ये करीम का लफ्ज जिस हवाले से आया है, अब जैसे मसलन कहा जाए बहादुरी, तो बहादुरी के लिए अरब में आठ नौ लफ्ज, तो अब दौलत के इस्तेमाल के हवाले से अल्लाह ने आपको बहुत दिया और आका हुसैन की बरकत से और देगा, आका अपने बच्चों की भूख और प्यास पे राजी हैं, लेकिन आपके बच्चों को सैराब भी देखना चाहते हैं और दुनियावी हर हलाल सहूलत के साथ देखना चाहते हैं, खुश होते हैं आका, तो बहुत दिया है अल्लाह ने और मजीद आपको देगा, लेकिन दौलत या वेल्थ जो आदमी की है उसके हवाले से, अजब समझदार आदमी के लिए, शायद शेक्सपियर का एक बहुत ही मशहूर ड्रामा है हेमलेट, उसके अंदर ये जुमला आया कि जब वो जहर देना चाहता था किसी को और वो जाता है ग्रोसरी शॉप में या मेडिकल स्टोर में और जहर खरीदता और दुकानदार को पेमेंट करता, मसलन $100 का नोट दिया और जहर खरीदा, दुकानदार ने कहा एहतियात से ले जाओ, ये पॉइजन ले जा रहे हो तुम, तुझे शेक्सपियर का शेक्सपियर की वर्डिंग शेक्सपियर के अल्फाज, मैं तो वो तलफ्फुज भी अदा नहीं कर सकता, तो शेक्सपियर ने ये जुमला कहलवाया इस शहजादे से जिसने जहर खरीदा, जहर ये नहीं है जो मैं ले जा रहा हूं, ये जो $100 मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, असली जहर ये है, ये दौलत जो है ये है वो जहर जो फातिमा ज़हरा ने अल्लाह से मन्नत मानी थी या दुआ की थी कि मेरे घर के अंदर ये दौलत ना आने पाए, ये जहर ना आने पाए, ये है शेक्सपियर का जुमला। लेकिन शेक्सपियर हो के डांटे हो, ये सबने लिया कहां से है ये तमाम चीजों को, मौला के कलाम से, नहजुल बलागा में मौला को मशहूर खुतबा, जो मुझे 100% क्या 110% यकीन कि इतनी बार इतनी बार इतनी बार इतनी बार इतनी बार आपने मेंबर से सुना कि उसको बयान करने का मकसद एक तरह से मौला का वाकया है, लेकिन एक तरह से आपका टाइम वेस्ट करना, वो खुतबा जिसमें मौला ने यह बताया कि मेरा सगा बड़ा भाई यकीन रात को मेरे पास आया ताकि मुझसे मदद ली जाए और मौला ने इसकी मदद करने उनकी मदद करने से इनकार किया। बहुत दिलचस्प वाकया है, लेकिन बहुत ज्यादा आजकल पढ़ा जाता, तबलीगी मजालिस पढ़ने वाला हर खतीब हर जाकिर हर आलिम हर स्टूडेंट वो वाकया जरूर पढ़ता है, तो मैं उधर नहीं जा रहा हूं, मैं उसके आखिरी जुमले पे आ रहा हूं, जो खुतबा वाकया तो अपनी जगह है कि मौला ने मना कर दिया बल्कि आग उनके हाथ में रख दी, लेकिन फिर जो अगले दिन खुतबा दिया उसमें मौला ने कहा, और इससे ज्यादा अजीब वाकया मौला का जुमला कोट कर रहा हूं, मौला का मेंबर है, मौला का जुमला है, नहजुल बलागा का खुतबा है, कहा कि ये तो मेरे पास मेरा भाई आया, और इससे ज्यादा अजीब बात यह कि कल रात को मेरे पास एक आदमी आया और मुझे शहद दिया, गुजराती में क्या कहते मग मद क्या, अच्छा समझ गए आप लोग, तो ये मुझे शहद ला के दिया, ये अरब की बेहतरीन गिजा। इसी हवाले से तो मौला ने एक मशहूर जुमला कहा था, क्या इंसान किस चीज पे अकड़ता है और किस चीज पे फख्र करता है। जो सबसे बेहतरीन गिज़ा जिसे कुरान ने कहा ये शफाउन लिन्नास, शहद की मक्खियों की वोमिट और कैद, और वो तो खैर अलग चीज है, बेहतरीन। कुरान जिसे कह दे कि इसमें इंसानों के लिए शफाए शहद, मैं अभी तो मौजू पर आया ही नहीं हूं, बड़ी तेजी से आना है। मौला ने कहा कि रात के वक्त मेरे पास एक आदमी ये गिफ्ट लेके आया, ये शहद लेके आया और मुझे दिया। ये वही आयशा इब्ने कैस, ये तो एक ऐसा खानदान है, ऐसा लगता है अहले बैत की दुश्मनी अपनी तकदीर में लिखवा के आया। यहां पे लफ्ज तकदीर आ सकता है जो खैबर में लोग मौला के लिए इस्तेमाल कर जाते हैं, अशअस इब्ने कैस। इसी का बेटा मोहम्मद इब्ने अशअस इब्ने कैस था, जिसने कूफे में गढ़ा खोद कर धोखा दे के मुस्लिम इब्ने अकील को गिरफ्तार किया और फिर कर्बला भी गए। और इसी की बेटी जोदा इब्ने अशअस इब्ने कैस थी, जिसने इमाम हसन को जहर दिया और खुद ये सारी जिंदगी मौला की मुखालिफत करता रहा। हजरत अबू बकर की बहन इसके घर में थी, ये उनका बहनोई है। मौला के बड़े इसके दिलचस्प वाकयात हैं, इंटरेस्टिंग। खैर, मौला कहते हैं रात को एक आदमी आया, शहद मुझे दिया, मैंने उससे पूछा ये क्या, वो क्या चीज है, ये जकात है, फितरा है। मौला के हाथ में बैतुल माल है ना, अब जहां बाहर यहां एक टेबल मैंने 10 दिन देखी थी, आपके अकाउंटेंट वगैरह बैठते होंगे, ट्रेजरर, आज वो नजर नहीं आ रही है। खैर, तो अब जब कोई आदमी पैसे ला के देता है तो पहला सवाल होगा ये क्या, ये डोनेशन है, मजलिस के लिए है, मेंटेनेंस के लिए है, अलम के लिए है, न्यास के लिए है, ये सवाल जरूरी, ताकि एक मद का पैसा दूसरे में इस्तेमाल ना हो। अब बहुत ये इस्लाम के बहुत अहम मसाइल हैं, इमाम बाड़े की चीज मस्जिद में ले जाना हराम है, मस्जिद की चीज इमाम बाड़े में ले लाना हराम है, यहाँ की चीज किचन में ले जाना हराम। अब तो ये आज का मौजू तो फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा। खुलासा ये, मौला ने पूछा यह है क्या, ये मौला खुद नहजुल बलागा के खुतबे में कह रहे हैं, ये जकात है, हुकूक शरई है क्या? उसने कहा कि ये कुछ नहीं, एक गिफ्ट मैं आपको दे रहा हूं। मौला ने कहा वाह हो तेरे हाल पर, इसके जरिए मुझे सीधे रास्ते से हटाना चाहता, मुझे ये शहद, ये शहद, ये शहद, ये बेहतरीन गिज़ा। इमाम फरमा रही है, इमाम का जुमला, ये मुझे सांप की कय और वोमिट लग रही थी। वोमिट कितनी खनौनी और कराहियत वाली चीज होती है कि आदमी से घबराता है, अपनी वोमिट भी बर्दाश्त नहीं है, कहां सांप की। अब शेक्सपियर का जुमला बाद में होगा, मौला का जुमला पहले है। तो ये दौलत है दुनिया, मगर दौलत के हवाले से इस्लाम ने इंसानों की 4 कैटेगरीज कर दी। अब आज अरबी सीख लीजिए मुझसे, सीख तो क्या लेंगे, सुन लीजिए। दौलत के हवाले से आदमी की एक कैटेगरी कहलाती है करीम। जियारत में इमाम जमाना का लकब है या मौला या अंता करीम मिन औलादिल किराम। और एक है सखी और एक है बखील, जिसे उर्दू में कंजूस कहते हैं, और एक है लईम, जिसे उर्दू में कमीनी फितरत का आदमी कहते हैं। ये 4 कैटेगरीज है। मशहूर हदीस है जो नाचे एक जुमले में निमटा के चांद रात के मैसेज को जियारत के मजलिस तक ले जा रहा, का करीम वो है जो खुद नहीं खाता है और दूसरों को खिलाता है। सूरह दहर उसका कसीदा भी पढ़ रहा है, अपने आगे की रोटियां भी उठा के दे दी जाती, वो करी। और सखी वो है जो खुद भी खाता है और दूसरों को भी खिलाता। जो ये डोनेशन देने वाले हैं और मस्जिद और आजादारी और सेंटर और बाकी चीजों में, ये खुद भी खा रहे हैं, यानी इनके भी अपने घर हैं, इनकी भी अपनी गाड़ियां हैं। आप जापानी सेंटर अटलांटा की पार्किंग देख के बाज़ औक़ात आंखें फट जाती हैं कि अल्लाह ने साहिबान ईमान को कैसी कैसी गाड़ियां दी। ये सखी खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने राह खुदा में दे भी रहे हैं। और एक है बखील, जो अब विद ड्यू रिस्पेक्ट आपकी नेक्स्ट जनरेशन में मुझे उसके साइंस नजर आ रहे हैं। बखील यानी कंजूस, कहा वो खुद तो खाता है, दूसरों को देने को तैयार नहीं, उसकी थिंकिंग होती है मी एंड माय फैमिली, जो कुछ है वो अपने लिए है, किसी चीज में अपने लिए कमी नहीं है, मगर दूसरों को उसमें शेयर नहीं कराएगा। और एक है लईम, जो खुद भी कुछ नहीं खाता है और दूसरों को भी नहीं खिलाता, दौलत पे दौलत जमा किया जा रहा है, अपने ऊपर भी यूज नहीं करता। जो मौला ने कहा ये तो अमीन है जो नेक्स्ट जनरेशन को दे के जा रहा, लेकिन वो मौजू बदल जाएगा क्योंकि फिर सवाल आएगा मौला की वो हदीस कि उससे बड़ा बदकिस्मत इंसान कौन है कि पैसे उसने जमा किए, कब्र में हिसाब किताब उसको देना है, और इस पैसे का लुत्फ, मजा, आराम, प्लेजर वो दूसरे लोगों को लेना। मजा लिया है घर के जिंदा रिश्तेदारों ने, जो बाद वाले जिन्होंने कोई काम काज नहीं किया, बाप की तरफ से उनको सब मिल गया, और मालूम है हिसाब किताब दे रहा है बाप कब्र के अंदर। ये तो शबे जुमा का मौजू है, कब्र तो शायद कल आ जाए। तो ये है लही, खुद भी नहीं खाता, दूसरों को भी नहीं देता। अभी अल्हम्दुलिल्लाह साहिबान ईमान इस स्टेज पे नहीं पहुंचे, कम अज कम यहां पर, लेकिन बखील वाला स्टेज आ रहा है, मी एंड माई फैमिली। बहरहाल अभी आप लोग हैं सखी वाले स्टेज पे। ये चारों चीजें दौलत के हवाले से, नेमतें, दौलत और नेमतें जो अल्लाह ने दी। मगर सबसे पहली कैटेगरी है करीब, जो खुद कुछ इस्तेमाल नहीं करता और सब कुछ दूसरों को दे देता। ज़ियारत में इमाम ज़माना का लक़ब है अंता करीम मिन औलादिल किराम, मौला आप भी करीम हैं और आपके बुजुर्ग भी सारे करीम थे। आप करीम की औलाद में हैं और खुद भी करीम हैं। खुद नहीं लेंगे कुछ, खुद फाके करेंगे, हमें रोजियां देंगे, खुद बीमार रहेंगे, हमें शफा देंगे, खुद कैद में रहेंगे, हमें रिहाई दिलवाएंगे, खुद मुसीबतों का सामना करेंगे, हमारी मुसीबतें दूर करते रहेंगे, मुश्किल कुशा कायनात बनेंगे। अपने घर का दरवाजा जलेगा तो खामोश रहेंगे, आपके घर पर कोई दुश्मन आ जाए तो अली की तलवार उसके खिलाफ हरकत में आ रही होगी। ये है करीम। इमाम ज़माना करीम है और औलाद करीम है, सारे बुजुर्ग करीम है। यही चांद रात का मैसेज था कि दिल नहीं चाहता है इस महीने के पहले 10 दिनों में अपनी कोई हाजत तलब करने का, लेकिन वो करीम इस पर खुश नहीं है कि वो फाके करके आपके आगे खाना रखे और आप कहें मुझे नहीं खाना। वो इस पर खुश है कि वो फाके करके आपके सामने रखता है और आप फाका उसकी खुशी की खातिर। तो अभी अय्याम अज़ा की तारीखें गुजरती चली जा रही, अगर के मुहर्रम तो अभी पूरा महीना है, लेकिन कम अज कम आका हुसैन से मंसूब दो रातें और हैं। अपने मसाइल, अपने प्रॉब्लम, अपनी हाजतें, ये सब बारगाह इलाही में हुसैन के वसीले से पेश करें, आप देखिएगा कितने जल्दी आपकी हाजतें कबूल। मुस्लिम इब्ने अकील के जरिए से अदालत में अगर कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग है, किसी के ट्रायल हो रहा है, आसानी। औलाद नहीं है, आसानी है, ये मैं पहले बयान कर चुका, लेकिन आका हुसैन का वसीला हर हाजत के लिए और हर दुआ के लिए, वो अल्लाह का वादा था। तीन वादे तो अल्लाह ने हुसैन से फौरन कर लिए, अल इमामा फी ज़ुर्रियते ही, इमामत तेरी औलाद में है, व शिफा फी तुर्बते ही, बीमारी से शिफा तेरी कब्र की मिट्टी में है, वल इजाबत तहत कुब्बते ही, और हर दुआ कबूल है जो तेरी जरी के गुम्बद के नीचे मांगी जाए। लेकिन इसके अलावा हुसैन का वसीला और वास्ता बहुत बड़ा है। अब अय्याम अज़ा इख्तिताम के मरहले पर है, कल की रात जुमेरात यानी शब जुमा, वैसे ही शब दुआ, लेकिन मैंने कहा कि अभी से आपको तैयार करूं कि ये रात भी और कल का दिन भी। कभी उर्दू का एक मुहावरा, आदमी एक रात सोता है और सारा साल रोता, और कभी एक रात जागता है और सारा साल सोता है। यानी कुछ ऐसे मौके आते हैं कि अल्लाह आपकी हर हाजत पूरी करे और आपने उसको मिस कर दिया, फिर पूरा साल आप परेशान रहेंगे। तो अय्याम अज़ा का ये मैसेज मैं कभी ना देता, दुआ अरहमा की वजह से, कि जब दुआ आप आशूरे के दिन पढ़ रहे हैं, उसका मैसेज अगर आशूरे के दो दिन के बाद दिया जाए तो हरज नहीं है। मगर अंत करीम मिन औलादिल किराम, खाली इमाम ज़माना के लिए नहीं है, हर इमाम के लिए, आका हुसैन के लिए भी है। अंत करीम मिन औलादिल किराम, मौला अली के लिए भी है। तो जब वो करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम है, तो उनकी करामत से फायदा उठाइए। और अब हम आगे बढ़ते हैं, और उसमें याद रखिए कि कभी आज़ादारी के हवाले से अपने किसी खर्चे में कमी ना आने दीजिए। मगर मुझे नहीं पता कि आप हजरात के यहां, क्योंकि बहुत सी चीजें आदमी बुजुर्गों से लेके आता, अहले बैत से रिलेटेड जो नजर नियाज उसका क्या कंसेप्ट है, लेकिन मैं वैसे तो पाकिस्तानी, लेकिन बुजुर्गों का ताल्लुक यूपी से है, हमारे यहां अहले बैत से रिलेटेड जो चीज होती है उसकी पाकीजगी का, तहारत का, क्लीननेस का लफ्ज तो सही नहीं है, क्लीन अलग चीज होता है, पाक अलग चीज होता है, पाकीजगी का बड़ा ख्याल रखा जाता था कि भाई ये आयत तथहीर है इनके लिए, पाक और पाकीजा। अपने लिए जो चीज हम इस्तेमाल करेंगे उसमें इतना हम केयर नहीं करेंगे, उसको भी पाक होना चाहिए ना, जिस चीज नहीं, लेकिन अहले बैत के लिए तो पीक पे पहुंचा देते। हमने तो वो जमाना भी देखा कि जहां पे नजर नियाज के लिए हमेशा कोरे बर्तन लाए जाते थे जो इससे पहले कभी इस्तेमाल ही ना हुए, और औरतें नहा धोकर फिर नजर नियाज की तैयारी करती थी। लेकिन आज की मजलिस का मौजू कहां है, वक्त गुजरा जा रहा है, मैं जल्दी से आ जाऊं। ये सारी पाकिजगी अपनी जगह पर, लेकिन अगर माल पाक नहीं है तो ये नहाना, ये धोना, ये अच्छे, ये नए कपड़े, ये नए बर्तन सब बेकार। अगर माल पाक नहीं है, अहले बैत की खिदमत में जो पाकिजगी पेश करना, आप कर्बला जाते हैं जियारत के लिए, खैर यहां पर भी एक कंट्रोवर्सी लोगों ने पैदा की है, तो आइए मैं नजफ की मिसाल दे दूं, काजमैन की मिसाल दे दूं, चले मदीने की मिसाल दे दूं, चले मक्के की मिसाल दे दूं। कि आप जाते हैं इम्मा के हरम में, तो होटल में जाके फौरन आप नहीं जाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, गुसल करते हैं, नए कपड़े न सही तो पाक पाकीजा कपड़े पहन के जाते हैं। अब कर्बला के हवाले से भी हुक्म यही है कि गुसल ज़ियारत मुस्तहब है, गुसल करके जाओ, लेकिन वहां लोग अपनी थिंकिंग ले आते कि जी हम तो कर्बला में आका हुसैन के रोजे में जाएंगे, गंदे कुचैले मैले गर्दालूद बस जैसे सोगवार होते हैं, लेकिन वही बात, हमारा दिल यही चाह रहा है कि वैसे जाएं, लेकिन इमाम कहते हैं कि हमारे पास आना है तो गुसल ज़ियारत करके आओ। और ये भी एक अजीब बात, कर्बला की ज़ियारत के हवाले से बहुत सारी बातें मैं कर्बला में सुनता रहता हूँ, लोगों के अपने ख्याल, अपने ख्याल में कोई बांधा नहीं अगर वो इस्लाम से टकराए नहीं। जैसे अभी मैं मिसालें दे रहा था कि औरतें जो है नजर की चीजें नहा धोके बनाती हैं, इसमें इस्लाम से कोई टकराव नहीं। नए कपड़े, नए तो नहीं यानी जो इस्तेमाल शुदा है, लेकिन धोकर कपड़े पहने जाते हैं, नए बर्तन लाए जाते हैं, कोई टकराव नहीं है इस्लाम से, अपने दिल की बात है, अमल करो। लेकिन जहां टकराव हो जाए, और अजीब बात यह कि उसी कर्बला में मोमिन अपने ही गलत ख्याल का जवाब भी दे देता, भाई मौलाना आप जियारत पे तो ले आए हैं, लेकिन वो जो कर्बला में अतराफ की जियारतें वो किस दिन कराएंगे, अच्छा 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 चले कल चलेंगे, अब जियारतें कल हो रही तो मौलाना वहां भी तो ले जाइए, जो एक बाग है छठे इमाम का, हमें उसकी भी जियारत करना है, वहां भी ले गए। अब कहा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, हर एक को पता है हिस्ट्री, कोई पहली दफा जाने वाला तो नहीं होता है बच्चों को छोड़कर, कि जब इमाम कर्बला में अपने दादा की जियारत को आते हैं, यहां रुकते हैं, गुसल करते हैं, इस कुएं से पानी लेकर गुसल करने के बाद, या फौरात के पानी से गुसल करते हैं, उसके बाद रोजे में जाते हैं। जियारत में आप सुन भी रहे हैं कि इमाम यहां गुसल करके रोजे में जाते हैं, और जब अपनी जियारत का वक्त आता है तो कहते हैं जी ये जो मराजे फतवा दे रहे हैं कि गुसल मुस्तहब है जियारत इमाम हुसैन के लिए, बल्कि आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा तो ये कि मासूमीन में से सिर्फ इमाम हुसैन की जियारत का गुसल ऑथेंटिक रिवायत से साबित, बाकी जो मासूमीन है उनकी जियारत का गुसल आप कर लेंगे मगर वो रजा की नियत से करें तो बेहतर है, होप ऑफ एक्सेप्टेंस। जहां लफ्ज रजा आ जाए इसका मतलब यह कि रिवायत बहुत वीक है, ये खुद ही समझ लीजिए। सिर्फ इमाम हुसैन की जियारत की रिवायत मोस्ट ऑथेंटिक रिवायत गुसल, और उसी में लोग कहते हैं गलत है, तो खैर ये तो बात ज़िमनन बीच में इसलिए आ गई कि गलत फहमी लोगों के जहन में है, मैंने कहा कि जरा इसकी वजाहत कर दूं, वापिस आ जाइए असल मौजू पर, और वो ये कि तहारत पाकीजा चीज अहले बैत को दो, लेकिन ये पाक पाकीजा खाली जिस्म और कपड़े और बर्तन की हद तक ना हो, सबसे अहम चीज तो वो पैसा है कि जिसके जरिए से आप अहले बैत की कोई खिदमत कर रहे हैं। खास तौर पर अगर कोई लुकमा किसी के पेट में जा रहा है, तबर्रुक है, नियाज है, नजर है, लेकिन इसके अलावा उसकी तहारत का कोई इंतजाम नहीं करता। मौलाना उसकी तहारत कैसे होती है, कपड़ा उसको तो हम जाके वॉशिंग मशीन में धो देते हैं, अपने आप को वॉशरूम में या बाथरूम में ले जाके शावर के नीचे धो देते हैं, कपड़ा बर्तनों को डिशवाशर में धो देते हैं, तो डॉलर का नोट भी जाके धोया जाए, नहीं, इसका पाकीजा होना है, इसमें से $20 पहले खुमस निकाले और उसके बाद वो $80 पाक होंगे। और अगर आप खुम्स देते भी हैं या आप पर खुम्स वाजिब नहीं है तो किसी और मोमिन का हक भी नहीं होना चाहिए। वो है नोट की पाकीजगी, माल अहले बैत को पाक और पाकीजा चाहिए, जिस्म भी, कपड़े भी, तो अब ये बात तो खैर ज़िमनन आ गई, करीब वो करीब। अब मैं फिक्री मसाले बताना नहीं चाहता लेकिन इशारा कर, आपके घर में जो पानी आ रहा है अगर उसके ऊपर खुमस वाजिब हो गया या जो आप उसका पेमेंट कर रहे हैं, मैं मसाइले खुमस नहीं बता रहा, तो उस पानी से अगर आप गुस्ले जनाबत या गुस्ले जुमा करेंगे वो गुस्ल नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा आपने बाथ लिया। बाथ लेना अलग है, गुस्ल करना अलग है, गुस्ल की कंडीशन होती, वुजू का पानी भी अगर उस पर खुमस वाजिब है तो उससे वुजू भी गलत है बल्कि पानी का इस्तेमाल हराम है। जो पानी पीना है अगर उस पर खुमस वाजिब है तो इस्लाम में खाली शराब हराम नहीं है, यह पानी पीना भी हराम। यकीनन दोनों की कैटेगरी में फर्क है लेकिन बात आराम की हो रही है, ये बीच में एक बात निकल आई। तो करीम उसे कहते हैं जो खुद नहीं खाता है दूसरों को खिलाता है। हम तो सखी बन जाएं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज कि खुद भी आप इस्तेमाल करें नेमतें और दूसरों को भी दे, तो ये करीम औलाद किराम है। यह मेज़ा के बारह दो इस हवाले से आपके लिए बहुत अहम है, अपनी हाजतें भी पेश करें, अपने प्रॉब्लम भी पेश करें, खास आका हुसैन के नाम से और आका हुसैन के हवाले से। मगर अच्छा, अब ये सब जो जो कुछ भी हम करते हैं, कुरान करीम की एक आयत है और ऐसी मशहूर कि मैंने आयत आज मैंने तीन आयतें पढ़ी थी, तिलावत की थी। पहली दो आयतों में तो मजमा बिल्कुल खामोश था, तीसरी आयत तो मैंने दो लफ्ज कहे, मजमे ने खुद ही आयत मुकम्मल कर दी। हल जजाउल एहसान इल्ल एहसान, एहसान का बदला सिर्फ एहसान। हजरत मूसा का वाकया याद दिला दूं, वाकया चूंकि आजकल बहुत मशहूर हो गए तो मैं उनकी डिटेल में नहीं जाता, वरना मेरा अपना ओरिजिनल स्टाइल तो है एक एक वाकया 40-40 या 35-35 मिनट लेता, अलबत्ता इसको इग्नोर भी नहीं करता हूं, थोड़ा सा याद दिला दूं। ये करीम इब्ने करीम या यामेजा की आखिरी तारीखें हैं हुसैन से रिलेटेड। बार बार जो जुमला मैं कह रहा हूं तो आपको समझ तो गए होंगे, बहुत एक्सपीरियंस है आपको मजालिस का, कि मसाइब का पहला जुमला बनेगा कि अब आज से जैनब का जिहाद शुरू हुआ। तो ये बार बार जो जुमला आ रहा कि हुसैन से रिलेटेड, हजरत मूसा का कितना मशहूर वाकया, मैं इसे भूल क्यों जाते। हजरत मूसा को हेतूर की जानिब जा रहे, हजरत मूसा को वही जिब्राइल के जरिए नहीं मिलती, जिब्राइल भी आते हैं ओकेजनली लेकिन ज्यादातर डायरेक्ट बात होती है उस दरख्त के जरिए से। और कोहेतूर बनी इसराइल में एक ऐसे लोकेशन पे था कि मूसा कहीं पर भी हो वहां तक जाने का रास्ता है, तो कभी किसी टाउन से, कभी किसी सिटी से, कभी किसी इलाके से जाते। आज भी जिस जगह पे थे वहां से कोहेतूर जा रहे, कोहेतूर पे मूसा खाली वही लेने नहीं जाते, लोगों की हाजतें, लोगों के सवाल, लोगों के प्रॉब्लम्स, ये कॉन्टेक्ट है कोहेतूर। तो अब ये मैं टाइम आपका वेस्ट कर रहा हूं, नए इलाके से जा रहे हैं, कोहेतूर के चारों तरफ डेजर्ट ही डेजर्ट है। कहा जाता है कि ओरिजिनल कोहेतूर जो है वो इजिप्ट में और इजिप्ट के डेजर्ट, बाद रिवायतों में नजब के करीब है लेकिन नजब का भी डेजर्ट। अब डेजर्ट के अंदर जो क्या अंग्रेजी में कहते हैं ओसिस यानी नखलिस्तान, अगर कोई ऐसी जगह आ जाए और आती, ये अल्लाह की एक नेमत, जगह जगह थोड़ी देर के बाद पानी का एक छोटा सा चश्मा या स्प्रिंग है और दो चार खजूर के दरख्त हैं और थोड़ा सा ग्रीनरी और घास। हजरत मूसा और हजरत मूसा क्या, एवरी ट्रेवलर इन द डेजर्ट, यहां पे वो स्टॉप करता करता जाता। जैसे हाईवे पे आप जा रहे हैं तो रास्ते में रेस्ट रूम वगैरह आते होंगे रुकने के लिए, मुझे तो नहीं पता कि मैं अमेरिका किसी हाईवे पे नहीं गया। हजरत मूसा चल रहे हैं, चलते चलते थोड़ा थक गए, पानी भी पीना है, फेस भी धोना है, देखा एक नखलिस्तान नजर आ रहा, उसकी साइंस होती है जो बयान करने का फायदा नहीं। वहां पे पहुंचे तो एक अजीब मंजर देखा कि एक दरख्त के नीचे एक बूढ़ा और डिसेबल्ड किस्म का आदमी पड़ा हुआ। अब हजरत मूसा तो अल्लाह के नबी हैं, आम मोमिन को भी हुक्म कि अगर ऐसी कोई तुम्हारे सामने कोई सिचुएशन आ जाए अपनी भूख प्यास छोड़ो, पहले दौड़ के जाओ, शायद उसको मदद की जरूरत। हजरत मूसा दौड़ के उसके पास गए, प्यास लगी है, चेहरा धोना है, फ्रेश होना है, छोड़ो, और कहा कि ऐशा के तू यहां कैसे, इतना बूढ़ा भी है, बीमार, डिसेबल्ड, हाथ पांव सारे के सारे नजर आ रहे हैं कि काम नहीं कर रहे। काम क्या कर रहे हैं, खाल भी उड़ चुकी है, गोश भी गायब है, हड्डियां नजर आ रही। ऐ शख्स ये तेरी क्या हालत? मुस्कुरा के कहा कि या नबी खुदा, मैं तो आपका काफी दिनों से इंतजार कर रहा था, बहुत देर से आप आए। तुझे पता है कि मैं आ रहा हूं? कहा हाँ, अल्लाह ने मुझे बता दिया था। तेरी ये क्या हालत है? कहा मुझे इबादत का बहुत शौक था, था उर्दू में है पास्ट टेंस, और इस्लाम में भी इसको पास्ट टेंस बनाइए, यानी जितनी इबादत ये कर रहा है आज, इतनी इबादत आपको रजा नहीं, हमारी औरतों को रजा नहीं। औरत की सुन्नत इबादत पर तो बड़ी रिस्ट्रिक्शन है इस्लाम की, कि बगैर शौहर की इजाजत के बहुत सारी सुन्नत इबादतें औरत कर ही नहीं सकती। बाज मराजे के हराम है, बाज के यहां कराहते शदीदा है। सुन्नत रोजा, सुन्नत नमाज, सुन्नत हज, उमरा, जियारत, तिलावत कुरान, दुआएं, वजीफे, मुसल्ले पे बैठना, इतनी सख्त उसकी हदीसें अब यहां नहीं पढ़ी जा सकती। यहाँ का तो माहौल ही बिल्कुल उल्टा है, लेकिन वो सारी चीजें अपनी जगह हैं। ये इजाजत नहीं है इनमें से बहुत सी चीजों में औरत को, बगैर शौहर की इजाजत के, कि उसकी एक जिम्मेदारी है घर को संभालना, लेकिन मौजू जरा सा बदल जाएगा और मजलिस का टाइम ऑलमोस्ट तक पूरा हो चुका है, तो जल्दी से वाकया बहुत मशहूर है, आपका टाइम क्यों वेस्ट करो। हजरत मूसा ने पूछा ये क्या काम? मुझे इबादत का बहुत शौक था, लेकिन अपने टाउन में या सिटी में या घर में रह के इबादत नहीं होती, करता हूं इबादत, लेकिन कभी कोई बच्चा आके कोई बात पूछ रहा है, कभी कोई भाई आके कोई सवाल कर रहा है, कभी कोई मिलने वाला आ गया, तो मैंने घर वालों से कहा कि मुझे खुदा हाफिज, मैं जा रहा हूं, इबादत का शौक है, शहर के बाहर रहूंगा, जो इजाजत थी इस्लाम से पहले। इस अशरे में भी हजरत खदीजा के वाकये में जरा जिक्र आ चुका है, तो क्यों आपका टाइम वेस्ट करूं? और आप भी हंस रहे होंगे कि मौलाना कहते भी जा रहे हैं और टाइम भी वेस्ट करते जा रहे हैं। तो खैर, मैं यहां पे आ गया, इबादत कर रहा हूं कितने साल से? कहा 200 साल से। लेकिन ये तेरी हालत क्या हुई? कहा या नबी खुदा, मैंने वुजू के लिए इतना पानी हाथों पे डाला कि खाल तक गल के गिर गया, और मैं नमाज के लिए इतनी इतनी देर खड़ा रहता था कि मेरे पांव खत्म हो गए, अब मैं जमीन पे पड़ा हुआ इबादत की वजह से। कुरान की एक आयत रसूल खुदा के हवाले से है ना, ताहा मा अंजलना अलैकल कुरान लितश्का, ऐ हबीब, हमने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तू अपने आप को इतनी तश्का, मशक्कत, जहमत में डाले, इतनी इबादत ना कर। या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैला इल्ला कलीला, रात को इबादत कर मगर इबादत में कमी कर, पैगंबर को हुक्म दिया जा रहा है। लेकिन ये मूसा की शरीयत में रजा थी, इतनी नमाजें पढ़ी कि मेरे पैर खत्म हो गए, इतने मैंने वजू किए कि मेरे हाथ खत्म हो गए, अचेरे की खाल उड़ गई। हजरत मूसा ने फिर एक लॉजिकल सवाल किया कि तू जिंदा कैसे है? आदमी को खिजा चाहिए ना, एनर्जी। कहा कि या नबी खुदा, एक आम आदमी आके सवाल करता तो ठीक था, आप जैसा नबी ये सवाल करे? अरे मैंने अल्लाह के लिए इबादत की है तो क्या अल्लाह मुझे भूल जाएगा? रोजाना सुबह को और शाम को एक परिंदा आता है, अपनी चोंच में एक अनार लेके आता, और वो अपनी चोंच से वो अनार को खोलता है, एक एक दाना अनार का मुझे भराता है, मुझे खिलाता, और वो अनार ऐसा है कि सुबह खाऊं तो शाम तक के लिए मेरा पेट भर गया, पूरी एनर्जी आ गई। अनार, देखिए मेरा तो ये सब्जेक्ट नहीं होता है कि कुरान और साइंस, इस्लाम और साइंस, कुरान और फल, इस्लाम और फ्रूट। अनार के बड़े फायदे रिवायतों में आए, और मौला के कई मोजिजात में अनार का तस्किरा। अनार आप लोग समझ रहे हैं कि कोई? हाँ बस 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 बस, ठीक है ठीक है। मैंने इसलिए कहा कि आज मुझे अटलांटा आते हुए 8-9 साल हो गए, और हर दफा 4 दिन 5 दिन अनार का एक दाना तक मैंने नहीं देखा, तो मैंने कहा शायद यहाँ लोग जानते ही नहीं है, अनार होता नहीं होगा, एक नापैद चीज होगी। मेरे होश को मत देखिए अजीब निगाहों से, मैं उसमें इंक्लूड कर रहा हूं दूसरे लोगों को, इंक्लूडिंग जापनी सेंटर की न्यास को भी। तो खैर, खुलासा ये है कि अनार जन्नत का फल, इमाम हुसैन के हवाले से हसन अंगूर और हुसैन अनार जन्नत से लेके आए मौजूदात। तो एक अनार दे के जाता है सुबह से लेके शाम, शाम से लेके सुबह। कुरान में भी तस्किरा है सूरह रहमान में रुमान का। खैर, तो अब अगला जुमला जो है इस पर अमल नहीं कीजिएगा, हराम है आपके लिए। मुझसे बहुत सारे जनरल प्रैक्टिशनर ने कहा कि मौलाना अनार का जूस पिया करें, वो डायबिटिक में कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, आपके लिए अमल करना हराम है मेडिकल एडवाइस जब तक कि कोई क्वालिफाइड आदमी ना दे। भाई आदमी अगर मरे ना तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से मरना चाहिए। तो खुलासा यह है कि मैं जो बात कह रहा था कि वह ना हजरत मूसा ने कहा कि हाँ ये बात समझ में आती है, तू अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह उसका रिवार्ड देता। अच्छा खैर अब मुझे देर हो रही है, मैं तो जा रहा हूँ ऑफिशियल ड्यूटी पर, वही वही लेना है कोहे तूर पे अल्लाह से बात करना। कहा या नबी खुदा आपने ये नहीं पूछा कि मैं आपका इतने साल से इंतजार क्यों कर रहा था। अब हजरत मूसा तो दिल में समझे थे कि ये इंतजार कर रहा होगा मेरी जियारत के लिए, पता चला नहीं जियारत तो नहीं कोई और बात थी। तो हजरत मूसा ने नहीं सवाल किया लेकिन कहा कि आपने पूछा ही नहीं। कहा था तू बता दे। कहा मुझे बहुत दिल चाहता है कि पहले से मालूम हो जाए कि जन्नत में मेरा स्टेटस आपके बराबर होगा या आपसे भी थोड़ा ज्यादा होगा या आपसे थोड़ा कम होगा, क्या होगा जन्नत में स्टेटस, इतनी इबादत है कि शौक तो होता है ना आदमी को, मैंने इतनी मेहनत की है तो इसका मुझे क्या रिवार्ड मिलने वाला। हजरत मूसा ने कहा अच्छा हुआ तूने सवाल रिपीट कर दिया, वरना जैसे ही मैंने तेरी स्टोरी सुनी खुद मेरे दिल में ख्याल आया था कि मैं तेरे बारे में ये सवाल करूंगा अल्लाह से जाकर। कहा या नबी खुदा लेकिन आके मुझे रिप्लाई दीजिएगा, ऐसे ही नहीं निकल जाइएगा। कहा यकीनन। गए मूसा, जो ऑफिशियल काम था पहले तो वो किया, कोहे तूर पे गए वही ली, लोगों के प्रॉब्लम पेश किए और जो फिर आखिर में कहा खुदा बंदा वो जो डेजर्ट में एक बूढ़ा मुझे मिला वो जन्नत में कहां पे होगा, मेरा स्टेटस या मुझसे थोड़ा कम या ज्यादा। कहा मूसा ये क्या बात की तूने, जन्नत का स्टेटस वो तो जहन्नम के आखिरी गड़े में होगा। हजरत मूसा घबरा गए, नबी हैं, साहिब मारिफत हैं, साहिब शरीयत हैं, साहिब किताब हैं, उलिल अज़्म हैं, मगर घबरा गए खुदावंदा जहन्नम। ये जहन्नम कल रात की मजलिस में आना चाहिए लेकिन अब मैं इसकी वजह से वाकये को इतना लंबा तो नहीं कर सकता कि दो पार्ट में आ जाए। कहा जहन्नम के आखिरी गड़े में होगा ये तो जन्नत क्या चीज। हजरत मूसा ने घबरा के कहा मगर क्यों, अल्लाह आदिल है, ये नमाज पढ़ रहा है उस जमाने के एतबार से कंप्लीट इबादत कर रहा है, उससे ज्यादा कर रहा है। कहा इसलिए कि उससे इतना सवाल कर लो कि सुबह शाम एक परिंदा इसके लिए अनार लेके आता, इसने कभी उसको ऑफर की कि एक दाना मैं छोड़ देता हूं ये तू खा ले, वो परिंदा वो दाना खाता कि ना खाता, इसने ऑफर की, इसके दिल में ख्याल आया, इसको इतना एहसास था कि जो मेरी खिदमत कर रहा है कम अज कम मैं कुछ तो इसको रिवार्ड दूं, और कुछ नहीं दे सकता क्योंकि हैंडीकैप या डिसेबल्ड हूं, इसी अनार का एक दाना जो एहसान करने वाले को इतना भी याद नहीं करता मेरी जन्नत में उसके लिए कोई जगह नहीं। हदीस है हर रमल्ला, ये हदीस आप अक्सर शब जुमा सुनते हैं लेकिन इसका आखिरी हिस्सा हर रमल्ला और रिहल जन्नत अला सलासा आकिल वालिदैन व काते रहम वल मन्ना, अल्लाह ने तीन गुनाहगारों पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी। जन्नत की खुशबू कहां जाती है, अगर यहां जन्नत है तो 70,000 माइल पर भी जन्नत की खुशबू जाएगी। ये आदमी जन्नत से इतना दूर होगा कि खुशबू भी नहीं जाएगी। एक वालिदैन का हक, नंबर दो रिश्तेदार का हक अदा न करने वाला, नंबर तीन एहसान जिसने किया है उसके एहसान को भूल जाने। जब इंसान इस दुनिया में आता है तो इतना कमजोर है कि एक मक्खी भी नहीं उड़ा सकता। आज अगर वो अकड़ के कहता है मेरे ऊपर किसी ने एहसान नहीं किया, आई एम सेल्फ मेड, ये जो आज अकड़ अकड़ के कह रहे हो सीना तान के सेल्फ मेड, जिस दिन दुनिया में आए थे उस वक्त से लेके यहां तक पता नहीं कितने मोहसिनों ने तुम तक पहुंचाया, कितने मोहसिनों का इसमें कंट्रीब्यूशन। खैर अभी वाकया पूरा कर दूं, वाकये को मैं कल नहीं ले जाना चाहता। हजरत मूसा वापस चले, उसे प्रॉमिस करके आए थे जाना तो है लेकिन दिल में सोच रहे कैसे जाके उसको बताऊं, उसको तो इतनी उम्मीद है, उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है, वो तो जन्नत में अपने आप को मेरे इक्वल समझ रहा है, शायद मुझसे भी बेहतर, मैं कैसे जाके कह दूं कि तू जहन्नम के आखिरी गड्ढे में है। लेकिन वादा कर चुके चुनाचे गए और उसका भी पूरा कंसंट्रेशन या फोकस उसी रास्ते पर था जिस दिन से मूसा गए। अब वो कोई वीक दो वीक का ट्रेवल नहीं था, सुबह गए तो शाम को आ गए, उसने देखा मूसा आ रहे, घबरा के कहा कि या नबी खुदा मेरा स्टेटस का तू जहन्नम के आखिरी गड्ढे में हो। यह है छठे इमाम की रिवायत और पांचवें इमाम की रिवायत है वो औरत जो बेवा हो जाए अपने शौहर के बाद, वो भी जहन्नम के आखिरी गढ़े में होगी। लेकिन हर बेवा औरत नहीं है, खास कैटेगरी है जो कल रात की मजलिस का उनवान हो। तो फिर मौलाना आपको जब आज बताना नहीं था तो आपने फुलझड़ी क्यों छोड़ दी, ताकि इस बहाने से कुछ औरतें आ जाए। खैर, तो खुलासा ये, हर बेवा औरत नहीं लेकिन एक खास कैटेगरी है बेवा औरतों की जो जहन्नम के आखिरी गढ़े में इसी के साथ होंगी। लेकिन आज का वाकया ये जहन्नम से निकल आए, आने वाले कल का वाकया ये औरतें भी निकल आएंगी अगर इसी तरह से चले। जैसे उसने सुना, घबरा के का रीजन मूसा ने रीजन बताया, रोने लगा, कहा कि या नबी खुदा तो एक काम करे, एक दफा आपको और सहमत होगी वापिस कोहे तूर पे जाए, और एक रिक्वेस्ट मेरी अल्लाह के सामने रख दे, मेरी दुआ, या नबी खुदा मैं आपको सहमत ना देता लेकिन खुद चलने के काबिल नहीं और अल्लाह से डायरेक्ट मेरा कॉन्टेक्ट भी नहीं हो सकता। अब मूसा को इसकी हालत देख के इतना रहम आ रहा था, तरस आ रहा था, हमदर्दी थी, कहा मैं जाऊंगा घर। रिक्वेस्ट क्या थी कि खुदा बंदा अगर मुझे जहन्नम में भेजना ही है तो मेरी बॉडी को इतना बड़ा कर दे, इतना बड़ा कर दे, इतना बड़ा कर दे कि पूरी जहन्नम में मैं जाऊं तो पूरी जहन्नम मुझसे भर जाए, ताकि मेरे बाद किसी और गुनाहगार को अजाब जहन्नम ना मिले। ये किडिश चाइल्डिश किस्म की ख्वाहिश है, जहन्नम तो बहुत बड़ी। लेकिन बहरहाल उसकी स्पिरिट देखिए, उसकी नीयत देखिए, उसका जज्बा देखिए। हजरत मूसा गए, कहा कि मूसा जाके उससे कहना मैंने उसको भी बख्श दिया और जिस जिस की वो सिफारिश करेगा, जिसने मेरे बाकी बंदों का इतना ख्याल रखा मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसका इतना ही ख्याल रखूं। इसने कुछ किया नहीं, खाली इंटेंशन, खाली नीयत में ही आया कि तमाम दुनिया के इंसानों की मदद करना है। अल्लाह ने इस पर, ये डिजर्व नहीं करता, इसको जन्नत दे दी। तो बहुत सारे मैसेजेस हैं। अच्छा, इतना मुझे 10 मिनट में ये रिवायत नहीं पढ़ना थी, 4 मिनट में पढ़ना था। आपका इतना फोकस, अटेंशन मैंने देखा तो मैं खुद ही वाकई के डिटेल में गया। एहसान फरामोश, अगर आप पे कोई एहसान करे, देखिए पेरेंट्स का इतना बड़ा रुतबा जो है ना, वन ऑफ द मेन रीजन ये कि सबसे पहला एहसान तो बाप और माँ का होता, अचो के बाप से भी ज्यादा माँ का एहसान होता है। 9 महीने अपने पेट में रखती है, आसान बात नहीं है वो जहमत और तकलीफ उठाना। अच्छा, बहुत सारी इबादतें ऐसी हमको पता भी नहीं चलता कि हम इबादत कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन अल्लाह के यहां हमारी इबादत का मीटर चल रहा। रिवायत यह है कि जो माँ तो नहीं, माँ जब उसके पेट में बच्चा आ जाता है, 9 महीने तक हर रात उसे इतना सवाब मिलता है जितना 1 साल कोई नमाज पढ़े, 1 साल कोई रोजा रखे, 70 हज करे और 70,000 उम्रे करे। हर रात माँ को इतना सवाब मिल रहा है, वो आसान तकलीफ नहीं है इस तरीके से बेटे को अपने पेट में या बच्चे को अपने पेट में उठाना। फिर उसकी एक ड्यूटी भी है, इन्ना रज़ना लमानत इंसान, हमने एक ट्रस्ट और एक डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी जमीन को दी, जमीन ने मना कर दिया, फाबैना मना कर दिया, आसमान को दी, आसमान ने मना कर दी, वल जिबाल पहाड़ को यह डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसने मना कर दिया, इंसान ने ये डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल कर ली। सूरह अहज़ाब की 2nd लास्ट आयत जो खुतबे में तिलावत की, अब तक तर्जुमे का वक्त नहीं मिला था, मैंने किसी तरह से यहां पे तर्जमा कर लिया। एक डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी मां को मिली, सवाब भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर बाप का भी रोल कम नहीं है। चुनाचे एहसान में लिस्ट में 2nd नंबर पे बाप आता, और फिर आपका टीचर, टीचर बहुत अहम है और बहुत जरूरी है कि सही टीचर हो। मुआविया, आपके जबान में लानत आएगी, लानत नहीं लाइए, रहमत लाइए, क्योंकि जिस मुआविया का मैंने नाम लिया है ये असली मुआविया का पोता है और यजीद का बेटा, जिसने तख्त खिलाफत पर जाकर सख्त और ठोकर मारी और कहा नहीं चाहिए मुझे ये हुकूमत जिसकी बुनियाद खून हुसैन पे रखी गई। मेरे बाप ने गलती की, वो जहन्नम में जल रहा है, मेरे दादा ने गलती की, वो अज़ाब खुदा का निशाना बना। मैं अपने बुजुर्गों की गलतियों में शेयर नहीं लेना चाहता। है कोई मोमिन आज? खुमस देते हुए तो जान निकलती। बाप ने अगर कोई हराम काम किया, हराम प्रॉपर्टी, हराम बिजनेस, बेटा कहता है मेरा इससे क्या ताल्लुक, मैं तो कोई हराम काम नहीं कर रहा, यजीद का बेटा है, रोल मॉडल है हमारे लिए। डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि इसका भी बहुत जिक्र आजकल मिंबर में होता, मगर सवाल यह है कि यजीद का बेटा इतना चेंज कैसे हुआ? अपने टीचर की वजह से। यजीद ने वो काम किया जो आज बहुत से मोमिन कर रहे हैं, यानी बच्चा पैदा करके छोड़ दिया, कहां पढ़ रहा है, किनके हाथों में, कौन उसको ट्रेन कर रहे हैं, कौन उसके टीचर है, कोई इसकी केयर ना की। एक मोमिन पहुंच गया, उसने यजीद के बेटे को मोमिन बना दिया। और तीन एग्जाम्पल ऐसी अल्लाह ने हर खानदान में पैदा की। अब मैं जुमले की वजाहत नहीं कर रहा हूं, तीन मिसालें अल्लाह ने, हजरत अबू बकर का बेटा मोहम्मद इब्ने अबू बकर, क्या शान है। फातिमा ने अब्बास के लिए कहा, अब्बास मेरा तीसरा बेटा है। मोहम्मद के लिए मौला ने कहा कि मोहम्मद मेरा तीसरा बेटा, क्योंकि ये इमाम हसन और इमाम हुसैन के बाद पैदा हुए थे अबू बकर के घर, और बनी उमैया के खानदान से यजीद का बेटा, और बनू अब्बास के खानदान से वो हारून का बेटा जिसका वाकई आ गया। ये एग्जाम्पल अल्लाह ने क्यों कोट की? कभी मायूस ना होना, बदतरीन माहौल में, बदतरीन घराने में, बदतरीन वालिदैन के यहां, बदतरीन फैमिली लाइफ के बीच में भी इतने अच्छे बच्चे बन सकते हैं। तुम तो जरा सा टेंशन दो, लेकिन मैं शायद अपने मौजू से थोड़ा सा हट गया। एहसान, बाप का, मां का, टीचर का, ये एहसान तो हर एक को पता। मराजे का, देखिए मराजे का एक एहसान अजीम है हम पर, वरना 70,000 हदीसें और 6,000 आयतें रोजाना पढ़ के आपको हर मसले का हल खुद निकालना पड़ता, और इतना आसान नहीं है 70,000 हदीसें कि आपने काम तो इंटरनेट के गूगल के सर्च इंजन में चले जाते और लफ्ज सलाद टाइप करते सारी हदीसें आ जाती। क्यों नहीं बनता है गूगल मर्जी और मुश्तहिद? इसलिए कि सारी हदीसें आ जाना इनफ नहीं है। कुछ एग्जाम्पल कल दूंगा, आज का वक्त जो मोमिनीन आज आ गए इतनी जहमत बर्दाश्त करके। एहसान है महाराजे का, चुनाचे मैं हमेशा जब किसी काफिले के साथ हज पर जाऊं या उमरे पे जाऊं, कहता हूं एक तवाफ इनके लिए कर, जब जियारत पे जाऊं एक जियारत इनके लिए पढ़ू। ना वो आपसे डिमांड करते हैं, ना वो आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन मसला डिमांड एक्सपेक्टेशन का नहीं है। वो परिंदे ने एक अनार खिलाया, उसे उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन जो अनार खा रहा है उसकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। तो अब महाराजे भी लिस्ट में आ गए। फिर कितने ही आपके फ्रेंड्स होंगे, कितने ही आपके रिश्तेदार होंगे। मुझे नहीं पता कि अटलांटा में इतनी बड़ी जमात कैसे आ गई कि एक्चुअल शहर में जमात छोटी रह गई और यहाँ बड़ी हो गई, लेकिन किसी ना किसी का इसके अंदर रोल तो होगा एक दूसरे की मदद करने। दुनिया इसी तरह चलती, जिसने आपकी मदद की उसकी मदद किसी और ने की होगी, और आपकी मदद किसी ने की तो आपने भी बाद में किसी की मदद की होगी। मगर एहसान को हमेशा याद रखना। मगर ये सारी लिस्टें, ये सब पीछे है सबसे बड़ा एहसान हम पर हुसैन मजलूम का। हमारा मोहसिन आजम सबसे बड़ा एहसान हम पर हुसैन मजलूम का है, जिसकी वजह से आज हम इस दीन को अपने साथ लेके बैठे हैं। और यही दीन है जो दुनिया में भी आपको बरकतें दे रहा है, आखिरत में भी आपका बेड़ा पार करा के आपको जन्नत में ले जाएगा। यह हुसैन की वजह से, इसीलिए हम हर चीज भूल जाते हैं, हुसैन को नहीं भूलते। देखिए पहले 10 दिन में लोग अपनी औलाद को भूल जाते हैं, हुसैन को नहीं भूलते। माओ से पूछिएगा, औरतों से पूछिएगा, पहले 10 दिन में हम अपनी नींद को भूल जाते हैं, हुसैन को नहीं भूलते। ये मोहसिन आजम है हमारे, ये हमारी आजादारी इसी हवाले से। मगर हुसैन को याद करने का तरीका क्या? परिंदे के लिए तो कह दिया खुदा ने कि है मूसा, उससे कहो एक दाना उसके लिए छोड़ दो। हर एक का एहसान उसके एतबार से होता, जो उसने खिदमत की उसके एतबार से एहसान होता है। एहसान सिर्फ पैसे का नाम नहीं। अब मर्जे का एहसान है, वो एहसान का मतलब ये नहीं कि आप जाके उनको पैसे देंगे, आप क्या देंगे उनको। वहां एहसान है रिस्पेक्ट, ये बहुत अहम लफ्ज मैंने कहा, जो आयतें मैंने पहली दो मजलिसों में पढ़ी थी आपको याद तो नहीं होंगी। कल्लबल्ला तुक्रिमून अल यतीम, तुम्हारा प्रॉब्लम है तुम यतीम की इज्जत नहीं करते हो। वहां रिस्पेक्ट का लफ्ज आया है, पैसे का लफ्ज नहीं आया। ये कल का मौजू आज नहीं, वक्त बहुत ज्यादा हो गया। मर्जे का एहसान मसलन रिस्पेक्ट, हर एक का एहसान उसके एतबार से होता जो उसको इस वक्त चाहिए। हुसैन का एहसान, एहसान वो परिंदे का एहसान न माना तो जहन्नम के आखिरी गढ़े में गए, और जो असगर कुर्बान कर देने वाले हुसैन का एहसान न माने, अकबर कुर्बान कर देने, हुसैन का एहसान ये कि जो हुसैन का मकसद, भाई यही कल रात की शाम गरीबा की मजलिस में मैंने एक मैसेज दिया था ना कि लब्बैक या हुसैन हल मिन नासिरिन का जवाब। ये मत कहिएगा कि वो 61 हिजरा था, ये 1441 हिजरा, तो फिर भी कम है टाइम। जब हम हज और उमरे पे जाते हैं तब भी कहते हैं लब्बैक, और ये जवाब है हजरत इब्राहिम की कॉल का, अज़िन फिन्नास बिल हज यातू का रिजाला, इब्राहिम लोगों को हज की कॉल करो तो वो खाने काबा की तरफ आएंगे। वो तो 5000 साल पहले पुकारा, आज हम कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो जब आप कहते हैं लब्बैक या हुसैन, ये हल मिन नासिरिन का जवाब है, और हल मिन नासिरिन का मतलब क्या था? आज आप देखिए कि किस तरह से इस्लाम को, अब ये लफ्ज मैं गलत कह रहा हूं लेकिन टाइम नहीं है तो गलत लफ्ज सुन लीजिए, आज देखें कि इस्लाम को क्या जरूरत। अगर बाप के पास पैसे बहुत ज्यादा तो आपको जरूरत नहीं है उसकी हेल्प करने की, लेकिन अगर वह लोनली और अकेला है तो आपको जाकर उसके साथ रहना। यहां पे बाप का एहसान पैसे देना नहीं है, बहुत से लोग ये समझते हैं। देखिए ये इंडिविजुअल केस है, मैं एक सेट फार्मूला नहीं बता रहा कि जी वो हमारे बाप इंडिया में है, हम रोजाना उनको 2000 हर महीने $2000 भिजवा देते, लेकिन मैं ऐसे बाप को भी जानता हूं कहते नहीं चाहिए हमें पैसा, हमें अपना बेटा चाहिए। जैसे जिसकी जरूरत, अगर कोई आदमी बीमार है तो उसकी मदद ये नहीं है कि आप उसको बिरयानी बिरयानी तो आप लोग खाते ही नहीं है, जो भी आप खाते होंगे वो ले जाएं, उसकी जरूरत है उसको आप डॉक्टर के यहाँ लेके जाइए। मतलब बहुत एग्जाम्पल जो है ना, बहुत ही खराब एग्जाम्पल है लेकिन टाइम नहीं। हुसैन की मदद ये है कि आज इस्लाम को किस चीज की जरूरत, 61 हिजरी में इस्लाम को जरूरत थी अकबर के छिदे गले छिदे कलेजे की, असगर के छिदे गले की, अब्बास के कटे बाजुओं की, जैनब की छीनी चादर की, हुसैन के कटे सर की, हुसैन ने ये कुर्बानी। आज आप देखिए आज इस्लाम को क्या जरूरत, और इस सवाल का जवाब कल आएगा। बस यहां तक मैंने बात पहुंचाई, इस सवाल का जवाब कल आएगा। कल दो तीन बातें जमा हो गई हैं लेकिन इंशाल्लाह आज की तरह से मैं विद इन टाइम लिमिट मजलिस मुकम्मल कर दूं। और तो मिसालें छोड़िए, 61 हिजरा और 1441 हिजरा, इस दो की तो मिसाल छोड़िए, खुद 61 हिजरा में भी करबला में इस्लाम को कोई और जरूरत थी और कूफे और शाम में कोई और जरूरत। करबला में कोई आता है हबीब आए हुराए कहा हमारे साथ जिहाद करो, कूफा और शाम में कोई आता है मौला सज्जाद, ये मंजर नहीं देखा जा रहा। दिल चाहता है तलवार निकाल के इनका तो क्या खात्मा करूंगा, खुद अपने आप को खत्म कर दो। कहा नहीं, यहां पे तलवार नहीं चलाना, यहां की डिमांड, यहां की रिक्वायरमेंट, यहां के जिहाद का तरीका अलग। वहां तलवार के जरिए जिहाद था या मजलूमियत के जरिए जिहाद, खुद उसी वक्त उसी टाइम पीरियड में विदन ए वीक नहीं विदन ए डे जिहाद का तरीका बदल गया। बस यही आपके जमाने की क्या डिमांड है, इंशाल्लाह जो कुछ मैं समझाऊं कल मैं आपको बताऊंगा, बाकी बातें आप खुद ही समझदार हैं, मुझसे ज्यादा कल आप समझेंगे। जरा सोचिए, दुनिया में कोई शहर ऐसा नहीं हो सकता जहां एक भी आले मोहम्मद का मानने वाला ना हो, एक आध आज की बात नहीं कर रहा, उस वक्त यजीद के दरबार तक में मुहिब्बाने अहले बैत थे। मुख्तार के वाकये में आपने देखा है ना, ये मुख्तार को कोई यजीद से मुलाकात नहीं करने दे रहा था, एक हबशी गुलाम काले कपड़े पहन के रोता है इसी दरबार, और वो जरिया बना कि वो मुख्तार को यजीद से मिलाता है, बल्कि नहीं मुख्तार नहीं, जिसने मुख्तार को आजादी दिलवाई उमेर इब्ने आमिर, मुख्तार जेल में, इब्ने ज़ियाद ने कहा मर जाऊंगा इसको नहीं छोड़ूंगा, यजीद के पास से ऑर्डर लेके कौन आया, उमेर। उमेर कौन है, आम आदमी है, कौन उसको दरबार में जाने दे। मालूम हुआ एक मोमिन गुलाम दरबार में निकल आया। अच्छा वो तो ऐसा था कि हर एक को पता था ये मोमिन, बहरहाल तारीख डिटेल में जाने का वक्त नहीं है। हिंदा से यजीद को दिली मोहब्बत तो थी, तो हिंदा तो मर गई गमे हुसैन में, लेकिन उसका अपना जो गुलाम था हमेशा यजीद ने उसको एक इज्जत दी, जो चीजें किसी और के लिए बर्दाश्त नहीं थी इस गुलाम को एग्जेम्प्ट किया। वो रोता रहता था काले कपड़े, मगर यजीद के दरबार में निकल आया एक शिया। और इसी तरह से जिस आदमी ने यजीद के खजाने से आका हुसैन का कटा हुआ सर चोरी करके नजफ में पहुंचाया और मौला अली के पहलू में दफन की, आप नजफ जाते मौला की जरी सामने, आपके जो लीडर है वो आपसे कहते यहां हम एक नहीं चार जियारतें पढ़ेंगे इस जरी पर, मौला अली की जियारत ठीक, हजरत आदम की जियारत ठीक है वो उनके पहलू में, हजरत नूह की जियारत वो भी ठीक है वो उनके भी पहलू में, और आका हुसैन की जियारत या आका हुसैन की जियारत क्यों पढ़ेंगे? क्या जो एक आम तरीका है कि हर जगह पढ़ो? नहीं, कहा नहीं, इसी जरिए में आका हुसैन का कटा सर भी दफन। तो यो आदमी यजीद के खजाने से आका हुसैन का कटा सर चोरी करके नजफ तक लाया, करबला तो जा ही नहीं सकता था, करबला तो चारों तरफ से बंद, वो भी यजीद के महल का ही तो था आदमी, तो हर जगह एक आध एक आध एक आध मोमिन तो होता ही था, कूफे के बाजार में भी कुछ मोमिन थे, कूफे में तो मौला काफी अरसे रहे, हबीब इब्ने मज़ाहिर का पूरा खानदान, वो आके कहते मौला सज्जाद ये मंजर ना देखा जाए, इजाजत दीजिए मर जाने की, मना कर देते। और आज हुसैन का लूटा काफिला बाजार कूफा पहुंच चुका है, 11 मुहर्रम है ना, हुसैन का लूटा काफिला आज बाजार कूफा में पहुंच चुका है। बाजार कूफा किसे कहते? सिर्फ एक जुमला कह रहा हूं, वरना यानी मसाइब तो अभी पढ़ना है, लेकिन क्योंकि आज की तारीख के अपने मसाइल, इसलिए जो जुमला अभी कह रहा हूं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, वरना कि तो मैं 15 मिनट इस जुमले की डिटेल में जाता हूं। वो क्या जुमला कह रहा हूं कि जिसके बाद फिर मैं आज की तारीख के मसाइब पे आता हूं। आका सज्जाद के सीने पे कितने दाग हैं, कितने लाशें उठाए, वो कल मैं जियारत की मजलिस में शोहदा के दफन के मसाइब पढ़ता हूं, पढ़ूंगा। लेकिन ये सारे लाशें एक तरफ रोते हैं तो ये कह के रोते हैं अश्याम अश्याम अश्याम। अकबर की जवानी से ज्यादा, असगर की मासूमियत से ज्यादा, कासिम के लड़कपन से ज्यादा, हुसैन की शहादत से ज्यादा सज्जाद अगर रोते तो बाजारों और दरबारों में बहनों और पुपियों के नंगे सर जाने। खाली अश्याम नहीं कहा, वजाहत भी की। जब एक शिया ने सवाल किया था फर्जंद रसूल करबला के वाकये को 30 साल हो गए हैं, आप रो रहे हैं, कब तक रोए? क्या जवाब दिया था? तूने इंसाफ नहीं किया, क्या कुरान में नहीं पढ़ा? याकूब का एक बेटा, वो भी मारा नहीं गया था, खाली खो गया था, इतना रोए कि वब्यज़त ऐनाह, कुरान कहता है कि आंखें सफेद हो गई, मेरे तो 18 यूसुफ करबला की जलती रेती में पड़े। घबरा के कहा लेकिन मौला वो सब तो शहीद हुए, शहादत तो एक बड़ा रुतबा है। कहा कि अगर मैं शहादत को रुतबा मानकर मातम ना भी करूं तो ये बताओ कि क्या माँ का, बहनों का, भुपियों का नंगे सर बाजारों में, दरबारों में, बलवाए आम में, नामहरमों में जाना? सज्जाद क्यों रो रहा है, क्यों आंसू बहा रहा? और 11 मुहर्रम आ गई, आज अहले बैत का लुटा हुआ काफिला बाजार कूफा में पहुंच गए। अंग्रेजी में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बाजार कूफा में काफिला पहुंचा तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उमर साथ चाहता है जल्दी से मैं दरबार इब्ने ज़ियाद में पहुंच जाऊं, क्योंकि इनाम मिलेगा जितना जल्दी पहुंचेगा। और इब्ने ज़ियाद कहता है कि काफिले को बाजार में रोको, जितना देर से ला सकते हो लेके आओ। वो क्यों ये चाहता है? दो रीजन बता रहा। पहला रीजन ये कि अभी मेरे दरबार का डेकोरेशन और सजावट इनकम्प्लीट, मोहम्मद की नवासियां जलते सूरज के नीचे रहे, मोहम्मद के नवासियां बाजार कूफा में खड़ी रहे कोई बात नहीं है, पहले मेरा दरबार डेकोरेट होना जरूरी। और दूसरा रीजन ये है कि आए हमारे साथ, तू काफिले को अगर जल्दी से लेके आ गया तो इससे मेरा दिल मुतमइन नहीं होगा, मैं चाहता हूं इतनी देर ये काफिला बाजार में खड़ा रहे कि कूफे का एक एक मर्द और एक एक जवान और बच्चा, मोहम्मद की नवासियां, अली की बेटियां और हुसैन के हरम का जी भर के तमाशा देख ले। چنانچہ قافلہ روک دیا گیا، آرڈر تو ابن زیاد کا چلے گئے، اور اللہ کیا حالت تھی اس وقت میرے آقا سجاد کی اور میرے مولا حسین کی. حسین نے پورے کربلا کے واقعے میں کہیں کوئی معجزہ پبلک میں نہیں دکھایا، لیکن بازار کوفہ کا امتحان اتنا بڑا ہے کہ حسین وہاں پہ پہلی بار لوگوں کے سامنے معجزہ دکھا رہے ہیں. اور وہ کیا تھا، نوک نیزہ پر حسین کے کٹے سر نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. پوچھا گیا کہ آخر پورے واقعے میں یہی میں تلاوت قرآن کیوں کی؟ کہا تاکہ سارے مجمع کی اٹینشن ادھر ڈائیورٹ ہو جائے. یہ تو ایک میریکل تھا نا، کوفے کے سارے مرد دوڑ کے یہاں پہ آ گئے، نوک نیزہ پر حسین کے کٹے سر کو تلاوت قرآن کو دیکھ رہے. میری زینب کے چہرے سے نامحرم کی نگاہ ہٹ جائے، میری بیٹیوں کے بالوں سے نامحرم کی نگاہ ہٹ جائے. معجزہ دکھایا لیکن زینب کا پردہ بچانے کے لیے، لیکن اپنی بیٹیوں کا پردہ بچانے کے لیے. لیکن وہ تو پھر بھی آقا حسین کے کائنات کا سب سے بڑا صابر انسان. نوک نیزہ پہ تلاوت قرآن شروع کی، مگر عباس جیسا غیرت مند تو یہ بھی برداشت نہ کر سکا. 11 محرم کا قافلہ، 11 محرم کی ڈیٹ ختم ہوئی ہے نا، 11 محرم کا قافلہ جب میدان کربلا سے چل رہا تھا تو کٹے ہوئے سر جمع کر کے نوک نیزہ پہ بلند کیے جا رہے. تاریخوں میں ہے کہ ایک سر تھا جسے جب نوک نیزہ پہ بلند کرتے تھے وہ نیزے سے زمین پہ گر پڑتا تھا. 3 مرتبہ کوشش کی گئی، آخر عمر سعد بھی عاجز آ گیا، کہا خولی یہ سر اپنے گھوڑے کی گردن سے باندھ لے، ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم کو دیر ہو رہی ہے کوفے پہنچنا. اور جب یہ کٹا سر خولی نے اپنے گھوڑے کی گردن سے باندھا اور خولی کا گھوڑا کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام سر جھکا کے دوڑتا تھا، یہ کٹا سر پورے راستے زمین سے ٹکرا ٹکرا کے اتنا زخمی شام میں پہنچا. کسی نے پوچھا مولا سجاد آخر یہ کٹا سر کس کا تھا جو کہ نو کے نیزہ پہ نہ رکا؟ سجاد کا سر جھک گیا، ایک مرتبہ کہا یہ میرے غیرت مند چچا ابوالفضل العباس کا کٹا سر تھا. راوی نے کہا تو مولا آخر یہ سر نوک نیزہ پہ کیوں نہ رکا؟ ہائے سجاد چیخے مار کے رو دیا، کہا تجھے کیا پتا، میرا غیرت مند چچا جس نے کبھی گھر کے صحن میں بھی اپنی بہن کا کھلا سر نہ دیکھا یہ منظر کیسے دیکھتا؟ میں نوک نیزہ پر ہوں اور میری بہنیں ظالموں کے دربار نامحرم کے مجمع میں بے مکھنا چادر کے لے جائی. الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارہ باب الحوائج عباس علمدار کی اس غیرت و وفا کا واسطہ. پروردگارہ اور کائنات کے سب سے بڑے مظلوم میرے مظلوم آقا حسین کے ان مصائب کا واسطہ. جو مومنین اور جو مومنات آج کے مجلس میں آئے ہیں، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو، ان کے گھر والوں کو اور ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. صفحہ عزا پہ بیٹھ کے گریا کرنے والوں کے تمام مرحومین اعلی علین میں جوار اہل بیت سے ملحق فرما اور ان کی ساری حاجتیں پوری فرما. پروردگارہ ہر مومن اور مومنہ جو صاحب اولاد ہیں اسے اولاد کے ہر دکھ اور ہر صدمے سے محفوظ فرما، اور جو بے اولاد ہیں انہیں رباب کی اصغر کا واسطہ صاحب اولاد فرما. ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. دنیا بھر کے مظلوم شیعان حیدر کرار کی جان، مال، عزت اور اولاد کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے تمام مراجی اور مجتہدین کا سایہ، خصوصاً حضرت آیت اللہ سیستانی کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، اور ان ظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ماتم حسین،
پر तेरा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में जैना दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब घर से बाहर बिनाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब ने बाबा से छुड़ाए थे कई बार असीर
जिसने बाबा से छुड़ाए थे कई बार असीर
आजाद कराने वाली आई बाजारों में ज़ैनब
पता दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में
जलते खेमों से उठा लाई अब्बास के बाद अली आबिद को बचाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब दिन की खातिर ये बीबी सालार बनी बन के अब्बास दिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब
दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब
ऐ ज़ैनब मेरी बहना ऐ ज़ैनब मेरी बहना ऐ ज़ैनब मेरी बहना
ऐ ज़ैनब मेरी बहना
काफिला एक मैं लाया था काफिला एक ले जा ज़ैना काफिला रास्ता मुश्किल है तो क्या रास्ता
मुश्किल है तो क्या
नादे अली दोहरा ज़ैना काफिला
एक मैं लाया था काफिला एक ले जा ज़ैना
काफिला एक मैं
लाया था काफिला एक ले जा ज़ैना
मेरी दुआ है साथ तेरे गम ना कर जो हाथ बंधे साथ मेरा था करबल तक जाना है अब शाम तुझे एक वजीफा हो तेरा नादे अली दोहरा ज़ैना काफिला एक मैं
लाया था काफिला एक ले जा ज़ैना
लेके अलम तू गाजी का आज से खुद गाजी बन जा तू भी अली की बेटी है जख्मों से घबराना क्या रुक न सके पैगाम मेरा ناد علی دہرا زینا آنسو پوچھ لے دامن سے آج گزر جا مقتل سے میری بہن ہے تو زینب صبر کی منزل طے کر لے لاکھ مخالف ہو یہ ہوا ناد علی دہرا زینب بال سکینہ جب روئے میرے بنا جب نہ سوئے اس کو تسلی تم دینا پہنچے گا آرام مجھے سن لے میرے دل کی یہ صدا ناد علی دہرا زینا
دیکھو اے کوفیو میں زینب دلگیر ہوں دیکھو اے سر ننگے مجھے کیوں ہے پھرایا سر ننگے مجھے کیوں ہے پھرایا میں وارث تطہیر ہوں دیکھو اے آل احمد کا تماشا دیکھنے آئے ہو کیوں اپنی غیرت کا جنازہ دیکھنے آئے ہو کیوں بے کفن دیں جو پلاسا دیکھنے آئے ہو کیوں میں اسی مظلوم کربل کی دکھی ہم سیر ہوں دیکھو اے کوفیو میں زینب دلگیر ہوں جس کا سجدہ قلب یزدان میں سمایا وہ حسین گر کے گھوڑے سے زمین پر جو نہ آیا وہ حسین سر پہ جس کو اپنے تیروں نے اٹھایا وہ حسین میں اسی مظلوم کربل کی دکھی ہم سیر ہوں دیکھو بوڑھے کاندھوں پر اٹھا کر لایا جو اکبر کی لاش دفن کر دی جس نے جلتی خاک میں اصغر کی لاش بے کفن بے گور ہے اس صاحب ہرو بر کی لاش میں اسی مظلوم کربل کی कि दुखी हम सीर हूँ
देखो खूफियों मैं ज़ैनबे दिलगीर हूँ देखो खूफियों मैं ज़ैनबे दिलगीर हूँ
शाम के दरबार में रेहान दिया हो बुका बेकफन भाई की बे चादर बहन ने जब कहा ए खुदा ए लम यजल बे गौर है भाई मेरा मैं उसी मजलू में करबल मैं उसी मजलू में करबल कि दुखी हम सीर हूँ
محمد والے محمد سلوات السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم علی المرتضی السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا السلام علیکم حسن مجتبی السلام علیکم ابا عبد اللہ على الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام لعبد ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر عهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصاً سيدي مولاي أبو الفضل العباس عباس ابن أمير المؤمنين وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن عقيل وحاني ابن أروى وحبيب ابن مظاهر هور السهيد الريائي السلام عليك امام سجاد المظلوم الغريب السلام عليك يا السلام عليك يا جناب زينب الكبرى السلام عليك يا جناب سكينه ام كلثوم رباب رقيه السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا وابن مولا السلام علیکم یا غریب الغربا السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس السموس یعنی سنفوس يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا صاحب الرس والزمان علمان 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 السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وجعلنا من اعوانك وانصارك ورحمه الله وبركاته اللهم صل نعم هيدري بس دشمنان البيت بلانك بس